लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि विश्व युवा सम्मेलन युवाओं को सुसमाचारी मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने तथा विश्व में सुसमाचार के साक्षी बनने में मदद प्रदान करे। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। जिसे पत्नी मिली उसे सुख शांति प्राप्त है, उसे प्रभु से वरदान मिला है। दरिद्र गिड़गिड़ाकर बोलता है किंतु धनी रुखाई से उत्तर देता है। जिसके बहुत से साथी हैं उसका सत्यनाश हो जाता है, किंतु अकेला मित्र भाई से भी अधिक निष्ठावान है। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 18वें अध्याय के अंतिम 3 पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में सूक्ति ग्रंथ का लेखक दैनिक जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए एक सुशील पत्नी, गरीब और विनम्र व्यक्ति तथा सच्चे मित्र के मर्म को समझाता है। सर्वप्रथम, जिसे पत्नी मिली उसे सुख शांति प्राप्त है, उसे प्रभु से वरदान मिला है। यहाँ लेखक ने स्मरण दिलाया है कि सुशील पत्नी एक अच्छे और सुदृढ़ परिवार की नींव होती है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पाते हैं कि यह ईश्वर की ही योजना थी कि पति और पत्नी एक साथ रहकर अपने परिवार का निर्माण करें। ईश्वर ने एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह को समग्र रूप से मानवता के लिए एक वरदान स्वरूप अर्पित कर उन्हें इसे एक आशीर्वाद के रूप में दिया है। उक्त पद से तात्पर्य यही कि एक पत्नी, भले ही वह हमारे ख्यालात के अनुसार सबसे अच्छी पत्नी न हो, उसे एक आशीर्वाद माना जाना चाहिए, क्योंकि वह जीवन के लिए और समाज के लिए उपयोगी होती है। पुरुष की चिंताओं और परेशानियों को कम करने के लिए पत्नी ही उसकी उत्तम साथी होती है, और कहीं पुरुष गलत रास्ते पर न भटक जाए इसके प्रति भी वह सचेत रहती है। इसीलिए पत्नी को सूक्ति ग्रंथ में ईश्वर का वरदान निरूपित किया गया है। फिर 18वें अध्याय के 23वें पद में लेखक धनी और गरीब के बीच की खाई के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। कहता है, दरिद्र गिड़गिड़ाकर बोलता है किंतु धनी रुखाई से उत्तर देता है। दरिद्र के पास धन दौलत नहीं होता, इसलिए दैनिक जीवन में उसका आचार व्यवहार भी विनम्र होता है। जब उसे किसी चीज की जरूरत होती है तब वह गिड़गिड़ाकर निवेदन करते हुए सामने वाले से कुछ मांगने की हिम्मत करता है, जबकि धनाढ्य व्यक्ति अपनी धन दौलत के कारण घमंडी हो जाता है और सोचता है कि उसकी धन संपत्ति ही सब कुछ है, इसलिए वह सभी के साथ रुखाई से पेश आता है। उसे लगता है कि सभी उसके नौकर हैं, क्योंकि पैसों के बल पर वह सब कुछ करा सकता है, सब कुछ खरीद सकता है। इस बात का अनुभव हमें भी हुआ होगा कि दुनिया का धनी अथवा कथित सुसंस्कृत व्यक्ति अपने दायरे में सभी शिष्टाचार और विनम्रता के नियमों का ख्याल रखता है, किंतु जब बात उसके नीचे काम करने वालों की आती है तब प्रायः वह उन लोगों के प्रति असहनीय रूप से असभ्य हो जाता है जो उसके अधीन है। वस्तुतः इस सूक्ति में हम बेहतर दुनिया के निर्माण की एक शांत अपील को महसूस करते हैं। और 18वें अध्याय के अंतिम पद में सूक्ति ग्रंथ का लेखक सच्चे मित्र का मर्म समझाते हुए लिखता है, जिसके बहुत से साथी हैं उसका सत्यनाश हो जाता है, किंतु अकेला मित्र भाई से भी अधिक निष्ठावान है। श्रोताओं, वास्तविक मित्रता का बंधन अक्सर प्राकृतिक बंधन से अधिक घनिष्ठ होता है। दाऊद और जोनाथन के बीच की दोस्ती एक ऐसी ही मिसाल है। बहुत से साथी होना अच्छा है, किंतु जरूरत के दिन सच्चा मित्र ही काम आता है। उस दिन साथियों की अधिक संख्या काम नहीं आती, बल्कि एक ही सच्चा मित्र काम आ जाता है, जो कभी कभी भाई से भी अधिक निष्ठावान होता है। अपने सुसमाचार में संत योहन बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सेवक नहीं बल्कि मित्र कहकर पुकारा था, इसलिए हम भी अन्यों को अपना सेवक या नौकर नहीं बल्कि मित्र माने।
सुनो मेरा उपदेश नया, नहीं सच है मेरी बात करो यकीन।
और अब आइए सूक्ति ग्रंथ के 19वें अध्याय पर दृष्टिपात करें। इस अध्याय का पहला भाग व्यक्तिगत अखंडता और धन के कई संदर्भ देता है। नैतिक होना और ईमानदारी की प्रतिष्ठा रखना अस्थाई धन रखने और मिथ्यावादी या झूठा होने से कहीं अधिक बेहतर है। जबकि सूक्तियों के द्वितीय भाग में विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला समाहित है। इनमें ज्ञान के मूल्य, प्रज्ञा को अनदेखा करने के परिणाम, सामान्य ज्ञान और व्यावहारिकता के महत्व तथा मानवीय योजनाओं की त्रुटिपूर्ण प्रकृति के बारे में विशिष्ट टीकाएं शामिल हैं। 19वें अध्याय का अंतिम भाग ईश इच्छा के प्रति सम्मान और इसे अनदेखा करने के विनाशकारी परिणामों पर केंद्रित है। वस्तुतः श्रोताओं, प्रभु के मार्गदर्शन का अनुसरण करना कोई जादुई फार्मूला नहीं है जो सफलता की गारंटी दे। फिर भी यह जीवन जीने का अब तक का सबसे समझदार और विवेकशील तरीका है। 19वें अध्याय के प्रथम तीन पद इस प्रकार हैं। कपटपूर्ण बातें करने वाले मूर्ख की अपेक्षा सदाचारी दरिद्र कहीं अच्छा है। सोच विचार के बिना उत्साह हानिकर है। जो जल्दबाजी से आगे बढ़ता है वह भटक जाता है। मनुष्य की अपनी मूर्खता उसका सत्यानाश करती, किंतु वह प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाता है। श्रोताओ, धनी आदमी के बजाय वह गरीब बेहतर है जो अपनी ईमानदारी पर चलता है। राजा सुलेमान ने यहाँ माना है कि सारी गरीबी नैतिक विफलता या कमजोरी के कारण नहीं होती है। ऐसे भी गरीब होते हैं जो ईमानदारी से चलते हैं। बाइबल आचार्य ब्रिजिस कहते हैं, अक्सर मनुष्य उन्हें अपने पैरों के नीचे रख देते हैं जिन्हें ईश्वर अपने हृदय में रखते हैं। मनुष्य दुष्टों का उनके धन के कारण सम्मान करते हैं और गरीबों का उनकी गरीबी के कारण तिरस्कार कर देते हैं। फिर लेखक कहता है कि कपटपूर्ण बातें करने वाले मूर्ख की अपेक्षा सदाचारी दरिद्र कहीं अच्छा है। सूक्ति ग्रंथ का लेखक गरीबी के नुकसान के बारे में ईमानदार है, फिर भी वह यह भी मानता है कि गरीब होना सबसे बुरी चीज नहीं हो सकती। गरीबी से भी अधिक क्षतिपूर्ण है मूर्खता, मूर्ख होना अथवा टेढ़ी मेढ़ी बातें करना और भी बुरा है। श्रोताओ, एक बार फिर लेखक गरीबी को धर्म परायणता और धन को घमंड और अपवित्रता से जोड़ता है। गरीब क्षण भर के लिए दुखी हो सकते हैं, लेकिन अनैतिक अमीर अनंत काल तक दुखी रहेंगे। इस प्रकार यह सूक्ति तीर्थयात्री को आंखों से नहीं अपितु विश्वास में चलना सिखाती है। लेखक उक्त पदों में कहता है कि व्यक्ति सोच विचार के बिना कुछ भी न करे, क्योंकि इसके बिना उसका उत्साह हानिकर होगा। वह कहता है कि जल्दबाजी भी अच्छी नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति जल्दबाजी में आगे बढ़ता है वह भटक जाता है। इस प्रकार श्रोताओं, सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है कि मनुष्य मूर्खतापूर्ण कृत्यों को न करे, क्योंकि मूर्खता विनाश की ओर ले जाती है और अपने विनाश के लिए खुद को दोषी ठहराने के बजाय मनुष्य ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने लगता है, जबकि अपनी विफलताओं का जिम्मेदार वह खुद होता है। इन शब्दों में श्रोताओं, दैनिक जीवन के अनुभवों को अभिव्यक्ति मिली है। यहाँ सूक्ति ग्रंथ के लेखक ने मानो हम सबसे प्रश्न किया है, कहीं ऐसा व्यवहार हमारा तो नहीं।
सुनो मेरा उपदेश नया, नहीं सच है मेरी बात करो यकीन।
प्रभु तूने मुझे रचा, प्रभु तूने जीवन दिया, प्रभु तूने पालन किया, तू ही मेरा
एक दूजे के पांव सदा।
बोले प्रभु
जैसा के मैंने किया,
बोले प्रभु
आपस में प्रेम के प्रतीक तुम बने रहो, स्वर्ग में मेरे साथ भोजन करो।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप के परोपकारी विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल कॉनराड क्रायस्की ने बताया कि कोरिया से हाल ही में लाए गए ताजा मानवीय सहायता पैकेज को यूक्रेन भेजा जा रहा है, जिसके लिए लगभग 30 बेघर लोग सामग्रियों को व्यवस्थित करने में सहायता कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस की नवीनतम मानवीय पहल की घोषणा करते हुए कार्डिनल क्रायस्की ने वैटिकन न्यूज को बताया कि दान के रूप में खाद्य सामग्री से भरे दो ट्रक यूक्रेन प्रस्थान कर रहे हैं। एक बड़ी कोरियाई कंपनी ने युद्ध से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को वितरित करने के लिए सूखे शोरबा के लगभग 30 लाख अंश वैटिकन भेजे हैं। कार्डिनल ने कहा कि दान एक गंभीर आवश्यकता की पूर्ति करेगा, क्योंकि शोरबा बहुत पौष्टिक है और इसे गर्म पानी में डालकर आसानी से तैयार किया जा सकता है। बुधवार की सुबह ही पोप फ्रांसिस के सराय के लगभग 30 व्यक्ति रोम की ग्रीक कार्तिक पल्ली संत सोफिया में सामानों को लोड करने का काम कर रहे हैं, जहां से यह कुछ ही दिनों में यूक्रेन के लिए रवाना हो जाएगी। कार्डिनल क्रायस्की ने कहा कि यह काम मानवीय सहायता का हिस्सा है। कार्डिनल क्रायस्की ने पोप के सराय के अतिथियों द्वारा दिखाई गई एकजुटता के महान प्रतीकात्मक मूल्य पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा जिन 30 बेघर लोगों को आश्रय मिला है, उन्होंने कोरिया से उपहारों की इस खेप को व्यवस्थित करने में स्वेच्छा से मदद करने में संकोच नहीं किया। उन सभी ने खुशी खुशी स्वेच्छा से काम किया, भले ही इसके लिए उन्हें कई घंटे काम करने पड़े। पोप के भिक्षादान विभाग के अध्यक्ष को कोई संदेह नहीं है कि शांति में योगदान देने वाले एक कारक के रूप में यूक्रेन के साथ एकजुटता के कई संकेतों का महत्व है। उन्होंने कहा यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जो लोग दुख सह रहे हैं, वे जानते हैं कि वे अकेले नहीं हैं, कि वे किसी न किसी रूप में संत पापा के संपर्क में हैं। कलीसिया बिना किसी भेदभाव के सभी की मदद करती है। यूक्रेन की यात्रा जिसके लिए कार्डिनल क्रायस की तैयारी कर रहे हैं, एक नई परियोजना का शुभारंभ है। उन्होंने बतलाते हुए कहा इन आगामी यात्राओं के साथ हम न केवल भोजन लाएंगे, बल्कि कुछ हफ्तों में हम युद्ध विधवाओं और बच्चों वाली माताओं के लिए लाविव में एक बड़ा घर भी खोलेंगे। अन्य संगठनों के साथ हम युद्ध के बीच इस बड़े घर का निर्माण करने में कामयाब रहे हैं और इसमें मुख्य भूमिका संत पापा ने निभाई है। इस आवास का निर्माण विशेष रूप से आने वाले ठंडा के मौसम में युद्ध से प्रभावित लोगों को राहत देने के मकसद से की गई है। पोप फ्रांसिस 31 अगस्त की शाम मंगोलिया की प्रेरितिक यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जिसके पूर्व उन्होंने संत मरिया मेजर महागिरजा घर जाकर अपनी यात्रा को माता मरियम को समर्पित किया। संत पापा फ्रांसिस बुधवार को रोम के मरिया मेजर महागिरजा घर गए और माता मरियम के सामने कुछ क्षण प्रार्थना में रुके। यह 111वां बार है जब संत पापा फ्रांसिस ने प्रेरितिक यात्रा के पहले प्रार्थना करने के लिए मरिया मेजर महागिरजाघर का दौरा किया है। वैटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार संत पापा ने रोम की संरक्षिका माता मरियम की पुरानी तस्वीर के सामने कुछ समय प्रार्थना में बिताया। पोप 31 अगस्त को रोम समय अनुसार 6:30 बजे मंगोलिया के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और 1 सितम्बर यानी कल स्थानीय समय अनुसार 10 बजे उलनबातर पहुँचेंगे। वैटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोलिन ने पोप फ्रांसिस की मंगोलिया में आगामी प्रेरितिक यात्रा को देश के छोटे और जीवंत कैथोलिक समुदाय को सुदृढ़ करने और वैटिकन तथा एशिया देश के बीच संबंधों को मजबूत करने की यात्रा कहा है। मंगोलिया अपने इतिहास में पहली बार किसी पोप को गले लगाने के लिए तैयार है और उसकी उम्मीदें बहुत अधिक हैं। वैटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में वैटिकन के राज्य सचिव ने उस उत्साह को वर्णन किया है जिसके साथ एशिया देश का छोटा कैथोलिक समुदाय संत पापा के स्वागत की तैयारी कर रहा है। अपनी 43वीं प्रेरितिक यात्रा में पोप फ्रांसिस 1-4 सितंबर को मंगोलिया की राजधानी उलनबातर में होंगे, जो रूस और चीन की सीमा से लगा हुआ देश है और लगभग 3.3 मिलियन निवासियों की आबादी के साथ इटली से 5 गुना बड़ा है। प्रेरितिक यात्रा को समझने के लिए मुख्य चीज है आदर्श वाक्य एक साथ आशा करना, क्योंकि जैसा कि कार्डिनल परोलिन बतलाते हैं, वहाँ आशा की बड़ी आवश्यकता है। आशा जो एक खाली उम्मीद नहीं है, लेकिन हम ख्रिस्तों के लिए विश्वास पर अर्थात हमारे इतिहास में ईश्वर की उपस्थिति पर आधारित है और जो एक ही समय में व्यक्तिगत और सामूहिक प्रतिबद्धता में बदल जाती है। प्रेरितिक यात्रा में संत पापा की क्या उम्मीदें हैं, इसके जवाब में कार्डिनल परोलिन ने कहा, एशिया के हृदय की यह यात्रा देश के अधिकारियों और कैथोलिक समुदाय के निमंत्रण का प्रत्युत्तर है। संत पापा और मंगोलिया दोनों ही ओर से उम्मीदें निश्चित रूप से बहुत अधिक हैं। पोप की इच्छा इस समुदाय से मिलने की है जो संख्या में छोटा है लेकिन युवा, जीवंत और अपने अनोखे इतिहास एवं संरचना के लिए आकर्षक है। इसके अलावा जिस देश में महान बौद्ध परंपरा है, वहां अंतर्धार्मिक आयाम बहुत महत्वपूर्ण होगा। कार्डिनल ने बतलाया, उनकी उपस्थिति ख्रिस्त जीवन के पथ पर विश्वास, आशा और उदारता को सुदृढ़ एवं प्रोत्साहित करना है, बल्कि इस मिशनरी सांस्कृतिक समन्वय के एक आकर्षक दौर की पूर्ति की पुष्टि भी करना है। वास्तव में यदि हम इस कलीसिया की कहानी के बारे सोचते हैं, तो हम प्रशंसा के बिना नहीं रह सकते और मैं कहूंगा कि सदियों की अनुपस्थिति के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में देश के शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक परिवर्तन के बाद यह व्यवहारिक रूप से फिर शुरू हुआ। पहले मिशनरी अग्रदूतों के रूप में आए, भाषा सीखी, घरों में पर्व मनाया, महसूस किया कि आगे बढ़ने का रास्ता उदारता का रास्ता होना चाहिए और स्थानीय लोगों को ऐसे गले लगाया जैसे कि वे उनके अपने लोग हों। इस प्रकार केवल कुछ दशकों के बाद एक सार्वभौमिक समुदाय शब्द के शाब्दिक अर्थ में एक कैथोलिक समुदाय बना जो स्थानीय सदस्यों के साथ साथ विभिन्न देशों के सदस्यों से बना है। इस बीच कल सृष्टि की देखभाल हेतु विश्व प्रार्थना दिवस मनाया जाएगा और इसी के साथ सृष्टि के मौसम की शुरुआत होगी। पोप फ्रांसिस जो सृष्टि की देखभाल पर विशेष जोर देते हैं, सभी लोगों को इस दिवस की याद दिलाई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस सृष्टि के मौसम में जिसकी शुरुआत कल होने वाली है, आइए हम उन दिलों की धड़कनों को याद करें, अपने खुद के, हमारी माताओं और दादियों के, सृष्टि एवं ईश्वर के दिलों की। संत पापा फ्रांसिस ने इस अवधि के विषय में कहा है कि यह हमारे आम घर की रक्षा का एक निर्णायक क्षण है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।